एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान
और मैं हूं आपका साथी मेजबान। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हम जो चुनते हैं वो सच में हमारी अपनी मर्जी होती है?
हाँ, इसी को दार्शनिक भाषा में इच्छा स्वतंत्र या फ्री विल कहते हैं, है ना?
बिल्कुल। और इस गहरी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे दार्शनिक मार्क बालाग्वेर। हम उनके काम पर आधारित दो स्रोतों को खंगालेंगे जो उनके विचारों को काफी अच्छे से सामने रखते हैं।
और ये सिर्फ कोई हवा हवाई अकादमिक बहस नहीं है ना, मतलब ये सवाल तो हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। हमारी नैतिकता, जिम्मेदारी की भावना, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है।
सही कहा। सोचिए ना, हम रोज कितने इतने फैसले लेते हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, क्या खाएं, क्या पहने, किससे बात करें, कौन सी नौकरी करें, हमें लगता है कि ये सब हमारे हाथ में है।
हाँ, लगता तो यही है।
लेकिन फिर विज्ञान आता है, खासकर न्यूरोसाइंस और भौतिकी, और वो हमें बताती है कि हर चीज का एक कारण होता है। तो क्या हमारे फैसले भी बस दिमाग में होने वाली केमिकल रिएक्शंस या यू नो पहले से तय घटनाओं का नतीजा है?
यही तो बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हमारी आजादी बस एक भ्रम है? मार्क बालाग्वेर इसी जटिल पहेली में एक नया रास्ता सुझाते हैं। चलिए पहले उनसे ही मिलते हैं, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं।
जरूर। तो मार्क बालाग्वेर ये कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और उनकी स्पेशलिटी है तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, यानी वास्तविकता की प्रकृति क्या है, ऐसे बुनियादी सवाल, और मन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ माइंड, चेतना और विचार कैसे काम करते हैं, इस तरह के गंभीर विषयों में।
लेकिन जो बात उन्हें दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से, वो ये है कि वो सिर्फ हवा में फिलोसॉफिकल बातें नहीं करते, मतलब वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर तर्क वितर्क करने वाले दार्शनिक नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स के जो नतीजे हैं उन्हें बहुत गंभीरता से लेते हैं।
हाँ, यही उनका अनोखापन है ना। वो इन वैज्ञानिक खोजों को अपने दार्शनिक विश्लेषण में बुनते हैं। उनका नजरिया काफी इंटरडिसिप्लिनरी है।
बिल्कुल। वो मानते हैं कि फ्री विल जैसे सवाल का जवाब सिर्फ दर्शन शास्त्र की किताबों में नहीं बल्कि शायद विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी छिपा हो सकता है।
और उनकी एक और अच्छी बात है जो मुझे लगी, कि वो मुश्किल विचारों को काफी आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे उनकी वो MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज वाली किताब है।
हाँ, वो आम पाठक के लिए लिखते हैं।
वो सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन क्या कह रहा है बल्कि अपना एक साफ और मजबूत पक्ष भी रखते हैं।
तो उनका मुख्य विचार क्या है, मतलब फ्री विल को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं असल में?
देखिए, बालाग्वेर का मिशन है फ्री विल के उस विचार को बचाना जिसमें हमें सच में लगता है कि हमारे पास असली विकल्प है और हम ही उन्हें चुनते हैं। इसे वो लिबर्टेरियन फ्रीडम या संक्षेप में एल फ्रीडम कहते हैं।
एल फ्रीडम, लिबर्टेरियन, ओके।
हाँ, उनका मानना है कि न तो दार्शनिक तर्कों ने इसे पूरी तरह खारिज किया है, न ही विज्ञान ने इसे झूठा साबित किया है।
मतलब उनके हिसाब से फ्री विल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहस अभी जिंदा है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दावा शायद यही है कि फ्री विल का सवाल अभी तक सुलझा ही नहीं है। ये कोई दार्शनिक पहेली नहीं है जिसका हल किसी स्मार्ट तर्क से मिल जाए।
तो फिर क्या है?
बल्कि ये एक खुला अनुभवजन्य प्रश्न है।
ओपन एम्पिरिकल क्वेश्चन, मतलब एम्पिरिकल क्वेश्चन जिसका जवाब प्रयोगों और ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, लैब में।
हाँ, उनका कहना है कि हमें इंसानी दिमाग को और गहराई से समझना होगा, खासकर फैसले लेने की प्रक्रिया को। भविष्य की न्यूरोसाइंस शायद हमें बता पाएगी कि क्या एल फ्रीडम जैसी चीज वाकई में संभव है और कैसे काम करती है।
अरे वाह।
वो कहते हैं कि ये तार्किक रूप से तो संभव है ही, शायद भौतिक रूप से भी मुमकिन हो।
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है।
तो वो किन मुख्य अवधारणाओं पर बात करते हैं, किन कॉन्सेप्ट्स पर?
वो पहले तो फ्री विल पर मौजूद अलग अलग नजरियों को देखते हैं। एक है हार्ड डिटर्मिनिज्म, जो कहता है कि भाई सब कुछ पहले से तय है, इसलिए फ्री विल हो ही नहीं सकती, बात खत्म।
ठीक है, ये तो एक एक्सट्रीम हो गया।
हाँ, और दूसरा है कंपैटिबलिज्म, जो मानता है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, यानी सब कुछ तय होना, एक साथ चल सकते हैं।
अच्छा, वो कैसे?
लेकिन बालाग्वेर मानते हैं कि ये लोग अक्सर फ्री विल का मतलब ही बदल देते हैं, उसे थोड़ा कमजोर कर देते हैं ताकि वो डिटर्मिनिज्म के साथ फिट हो सके। वो इस नजरिए को नाकाफी मानते हैं।
इसलिए जरूरी है कि सब कुछ पहले से तय ना हो, यानी थोड़ी अनिश्चितता, इनडिटर्मिनिज्म जरूरी है। बालागोयर इसी खेमे में है और अपनी एल फ्रीडम की थ्योरी पेश करते हैं।
और यहीं पर शायद क्वांटम मैकेनिक्स का रोल आता है, क्योंकि क्वांटम स्तर पर चीजें वो अनिश्चित होती हैं, है ना?
हाँ, वो इस संभावना पर विचार करते हैं कि शायद क्वांटम अनिश्चितता ही दिमाग में होने वाले फैसलों को वो जरूरी खुलापन देती हो।
लेकिन वो ये पक्का नहीं कहते।
नहीं, वो जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक संभावना है। साथ ही वो हमारे अपने अनुभव, जब हम कोई मुश्किल चुनाव करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, उसे भी एक अहम सबूत मानते हैं। वो फीलिंग कि हाँ, ये मैंने चुना।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो बुनियादी टकराव है, एक तरफ हमारी आजादी की भावना, दूसरी तरफ विज्ञान का कहना कि हर चीज का कारण है, बालागोयर इसे कैसे संभालते हैं?
आपने बताया कि उनकी एल फ्रीडम के लिए दो शर्तें हैं। हाँ, दो शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए अगर हमें सचमुच एल फ्रीडम हासिल है। पहली है विकल्प की जरूरत, चॉइस रिक्वायरमेंट।
अब चॉइस रिक्वायरमेंट, ठीक है।
यानी जब हम कोई फैसला ले रहे हों तो कम से कम दो रास्ते सचमुच हमारे लिए खुले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता तय था और हमें बस लगा कि हम चुन रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक, यानी हर घटना पहले से तय नहीं हो सकता।
ओके, और दूसरी शर्त?
दूसरी है नियंत्रण की जरूरत, कंट्रोल रिक्वायरमेंट।
कंट्रोल रिक्वायरमेंट,
यानी उन खुले रास्तों में से चुनना हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव बस हवा में, किसी संयोग, किसी रैंडम चांस से हो गया। फैसला करने वाले हम हों, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं हों।
ठीक है, तो पहले ये डिटर्मिनिज्म वाली चुनौती देखते हैं। एक मशहूर तर्क है परिणाम तर्क, कॉन्सिक्वेंस आर्ग्यूमेंट। ये सुनने में ही काफी वजनदार लगता है। ये क्या कहता है?
ये तर्क कहता है कि अगर दुनिया पूरी तरह डिटर्मिनिस्टिक है,
मतलब आज जो हो रहा है वो बिग बैंग के समय से चली आ रही घटनाओं और प्रकृति के नियमों का अनिवार्य नतीजा है।
हाँ, एग्जैक्टली। तो हमारे आज के फैसले भी उसी चेन का हिस्सा है। और क्योंकि हमारा ना तो अतीत की घटनाओं पर कोई कंट्रोल था, न ही प्रकृति के नियमों पर, तो हमारे आज के फैसलों पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। फ्री विल बस एक छलावा है।
बाप रे, ये तो सुनने में ही दम घोटने वाला तर्क है। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं बचा।
तो बालागोयर इसमें पहली दरार कहां देखते हैं, कहां से इसे तोड़ते हैं?
वो कहते हैं कि ये पूरा तर्क इस बात पर टिका है कि डिटर्मिनिज्म सच है। लेकिन क्या ये सच है?
अच्छा,
आधुनिक भौतिकी, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स, हमें बताती है कि शायद ब्रह्मांड मौलिक स्तर पर डिटर्मिनिस्टिक है ही नहीं। क्वांटम लेवल पर अनिश्चितता, इनडिटर्मिनेसी मौजूद है। चीजें पूरी तरह से तय नहीं है।
ओह, तो डिटर्मिनिज्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये खुद एक वैज्ञानिक बहस का मुद्दा है। इसलिए परिणाम तर्क उतना मजबूत नहीं जितना लगता है। विकल्प की जरूरत, चॉइस रिक्वायरमेंट, भौतिक रूप से संभव हो सकती है।
अच्छा, तो शायद दुनिया पूरी तरह तयशुदा नहीं है, ब्रह्मांड में थोड़ी गुंजाइश है। लेकिन फिर दूसरी और शायद ज्यादा मुश्किल चुनौती आती है, नियंत्रण वाली, कंट्रोल रिक्वायरमेंट।
हाँ, ये ज्यादा पेचीदा है।
अगर फैसले पहले से तय नहीं है तो क्या वो बस रैंडम है? मान लीजिए मैं चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम में से चुन रहा हूं और मेरे दिमाग में कोई, पता नहीं, कोई रैंडम क्वांटम घटना होती है जिससे मैं वनीला चुन लेता हूं, तो क्या ये मेरा फैसला था या ये बस हो गया? यहां कंट्रोल कहां है?
यही सबसे बड़ी पहेली है। और यहीं पर न्यूरोसाइंस के कुछ मशहूर प्रयोग सामने आते हैं, जैसे बेंजामिन लिबेट के प्रयोग, याद है आपको?
हाँ हाँ, बिल्कुल, लिबेट वाले।
इन प्रयोगों ने दिखाया कि जब हम कोई साधारण काम करने का फैसला करते हैं, जैसे उंगली उठाना, तो हमारे सचेत रूप से फैसला करने से, मतलब हमें लगने से कि हाँ, अब मैं उंगली उठाऊंगा, उससे थोड़ा पहले ही दिमाग में एक अवचेतन गतिविधि शुरू हो जाती है। उसे रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं।
अरे, तो क्या दिमाग ने पहले ही तय कर लिया और हम बस पीछे पीछे चल रहे हैं? ये तो सुनने में अजीब लगता है। कई लोगों ने इसे फ्री विल के ताबूत में आखिरी कील की तरह देखा था।
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा कि हमारी चेतना तो बस दर्शक है। लेकिन बालागोयर लिबेट के प्रयोगों की इस सीधी साधी व्याख्या को सिरे से नकारते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रयोग उस तरह की फ्री विल को छूते भी नहीं है जो हमारे लिए मायने रखती है।
कैसे? उनके तर्क क्या हैं इस पर?
पहली बात, लिबेट के प्रयोग बहुत ही छोटे, पल भर में होने वाले, लगभग बिना सोचे समझे किए जाने वाले कामों पर थे, जैसे बटन दबाना। ये उन बड़े फैसलों जैसे नहीं है जहां हम घंटों सोचते हैं, फायदे नुकसान तोलते हैं, जैसे करियर चुनना या शादी करना।
हाँ, वो तो बहुत अलग तरह के फैसले होते हैं।
दूसरी बात, ये रेडीनेस पोटेंशियल शायद फैसला खुद ना हो, बल्कि दिमाग की बस एक तैयारी हो, या किसी काम को करने का एक आवेग, एक अर्ज हो, जिसे हम बाद में अपनी चेतना से हाँ या ना कह सकते हैं। लिबेट ने खुद भी बाद में वीटो पावर की संभावना मानी थी।
अच्छा, मतलब हम उसे रोक सकते हैं।
हाँ शायद, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो बालागिर उठाते हैं वो है कठिन फैसले, टॉर्न डिसीजंस का कॉन्सेप्ट। लिबिट के प्रयोग इन पर तो लागू ही नहीं होते।
टॉर्न डिसीजंस, सही कहा। टॉर्न डिसीजंस ये वो लम्हे हैं जब हम सचमुच दो या ज्यादा विकल्पों के बीच फंसे होते हैं। हर तरफ जाने के अच्छे कारण होते हैं और कोई आसान जवाब नहीं होता।
हाँ, सोचिए दो बराबर की अच्छी नौकरियों में से चुनना या किसी नैतिक दुविधा में फंसना जहां दोनों रास्ते मुश्किल हों। बालागिर कहते हैं कि असली एल फ्रीडम इन्हीं पलों में काम करती है।
तो इन टॉर्न डिसीजंस में होता क्या है? क्या बालागिर समझाते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त?
हाँ, वो एक संभावित न्यूरोबायोलॉजिकल कहानी पेश करते हैं और वो जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है जिसे भविष्य में जांचा जा सकता है।
ठीक है, क्या है वो कहानी?
वो कहते हैं, एक, जब हम सोचते हैं, कारण तौलते हैं, तो ये सब दिमाग में असली भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं, न्यूरल एक्टिविटी होती है। दो, एक टॉर्न डिसीजन में अलग अलग विकल्पों के लिए सोचने वाली दिमागी प्रक्रियाएं लगभग बराबरी पर आ जाती हैं। दिमाग एक तरह के संतुलन, इक्विपोइस या चौराहे पर खड़ा होता है।
मतलब दिमाग खुद कंफ्यूज्ड है।
हाँ, एक तरह से इस नाजुक मोड़ पर नतीजा न्यूरोलॉजिकल स्तर पर पहले से तय नहीं होता। इट्स अनडिटर्मिंड, यानी दिमाग किसी एक तरफ झुकावा नहीं है।
ओके।
चार, फिर शायद कोई बहुत छोटी सी अनिश्चित घटना, इनडिटर्मिनिस्टिक इवेंट, हो सकता है क्वांटम स्तर से जुड़ी हुई, इस संतुलन को तोड़ती है और किसी एक विकल्प की तरफ पलड़ा भारी कर देती है और फैसला हो जाता है।
लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आ जाता है, अगर अंत में एक अनिश्चित, शायद रैंडम घटना ही फैसला कर रही है तो इसमें मेरा नियंत्रण कहां रहा? ये तो फिर संयोग ही हुआ ना।
यहीं पर बालागिर का सबसे चतुर और महत्वपूर्ण तर्क आता है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ संयोग नहीं है।
क्यों?
क्योंकि उस नाजुक अनिश्चित मोड़ तक दिमाग को पहुंचाया किसने? व्यक्ति ने अपने विश्वासों, इच्छाओं, मूल्यों, तर्क वितर्क से।
अच्छा,
व्यक्ति ने सोच विचार करके, कारणों को तौल कर, खुद को उस बिंदु पर लाया जहां दोनों विकल्प उसके लिए उसके कारणों के आधार पर संभव और जायज लग रहे थे।
मतलब वो अनिश्चित घटना आसमान से नहीं टपकी, बल्कि वो उसी विचार प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसे मैंने खुद चलाया था।
बिल्कुल, वो अंतिम ट्रिगर भले ही अनिश्चित हो, लेकिन वो उस मशीनरी के अंदर हुआ जिसे आपने खुद बनाया और चलाया था। आपकी सोच विचार ने ही वो स्टेज तैयार किया था।
तो चॉइस रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई क्योंकि नतीजा पहले से तय नहीं था।
हाँ,
और कंट्रोल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई क्योंकि ये मेरी ही विचार प्रक्रिया का हिस्सा था।
एग्जैक्टली, ये एक एजेंट ऑथर्ड प्रोसेस का हिस्सा है, यानी आप उस प्रक्रिया के लेखक हैं।
तो ये ऐसा है जैसे बर्फीली सड़क पर गाड़ी चलाना। आप कंट्रोल में हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, पर थोड़ी फिसलन भी है जो तय नहीं कि कब होगी, पर वो आपकी ड्राइविंग का ही हिस्सा है।
क्या बढ़िया उपमा दी है। हाँ, कुछ वैसा ही। वो अनिश्चितता आपके नियंत्रण को खत्म नहीं करती, बल्कि उसी का हिस्सा बन जाती है, खासकर उन मुश्किल टोन डिसीजंस में।
तो क्या बालागिर ये दावा करते हैं कि हमारे पास एल फ्रीडम है, कि ये साबित हो गया?
नहीं, और यही उनकी वैज्ञानिक ईमानदारी है। वो कहते हैं कि उन्होंने ये साबित नहीं किया है कि फ्री विल है, उन्होंने बस ये दिखाया है कि एल फ्रीडम संभव है, तार्किक रूप से भी और शायद भौतिक रूप से भी। उन्होंने एक मॉडल पेश किया है।
तो अब गेंद विज्ञान के पाले में है।
हाँ, क्या हमारा दिमाग वाकई टॉर्न डिसीजंस के वक्त ऐसे काम करता है? क्या वहां निर्णायक अनिश्चित घटनाएं होती हैं? ये भविष्य की न्यूरोसाइंस को खोजना होगा। इसीलिए वो फ्री विल को एक खुला अनुभव जन्य प्रश्न कहते हैं।
वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, क्या टेक अवेज हैं?
सबसे पहली बात तो यही टॉर्न डिसीजंस वाली है। मुझे लगता है बहस को लिबिट के छोटे मोटे कामों से हटाकर इन असली मुश्किल फैसलों पर लाना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। हम सब अपनी जिंदगी कैसे फैसलों से जुड़ सकते हैं जब लगा हो कि दिमाग दो हिस्सों में बट गया है।
सही बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि फ्री विल अब सिर्फ दार्शनिकों की चाय की प्याली का तूफान नहीं रहा। बालागिर इसे विज्ञान की दुनिया में ले आए हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा दिमाग उस तरह से बना है जहां अनिश्चितता और नियंत्रण साथ साथ चल सके। ये लैब में टेस्ट होने वाली चीज है। ये फ्री विल को लेकर बहस का रुख ही बदल देता है।
तीसरा, ये उस गहरी मजबूत किस्म की आजादी का बचाव है जो हमें महसूस होती है। कई बार जो कंपैटिबलिस्ट परिभाषाएं दी जाती हैं वो ऐसी लगती हैं मानो कह रही हो हाँ, तुम्हारे पास फ्री विल है, पर वो वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो। बालाग्वेर कहते, नहीं, हमें उस असली वाली एल फ्रीडम की संभावना को गंभीरता से लेना चाहिए।
हाँ, जो हमें अपनी जिंदगी का लेखक होने का एहसास दिलाती है। यही हमारी जिम्मेदारी की भावना का आधार भी तो है।
बिल्कुल, और एक चेतावनी भी है, चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बनाने से बचना। आजकल बहुत सुर्खियां आती हैं कि विज्ञान ने फ्री विल को खारिज कर दिया। बालाग्वेर हमें दिखाते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है, ये बहुत जटिल विषय है, इसमें बहुत बारीकियां हैं, हमें ऐसे दावों पर आलोचनात्मक नजर रखनी चाहिए।
हाँ, ये जल्दबाजी वाले निष्कर्ष ठीक नहीं, और शायद सबसे गहरा विचार यही है कि नियंत्रण और अनिश्चितता दुश्मन नहीं, दोस्त हो सकते हैं। एक तर्क आधारित आत्मनिर्देशित प्रक्रिया के अंत में होने वाली अनिश्चितता उसे रैंडम नहीं बनाती, बल्कि शायद वही उसे मेरा फैसला बनाती है। ये सोचना ही अपने आप में क्रांतिकारी है।
इस चर्चा से कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनने वालों के दिमाग में अटक जाएं, कुछ यादगार विचार या कोट्स जैसे।
हाँ हाँ, जरूर। पहला तो यही कि फ्री विल अब सिर्फ फिलॉसफी का सवाल नहीं, एक साइंटिफिक सवाल भी है कि मुश्किल फैसलों के वक्त हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है।
दूसरा, असली फ्री विल शायद उंगली हिलाने में नहीं, बल्कि उन टोन डिसीजंस में है जहां हम पूरी तरह सोच विचार में डूबे होते हैं। फोकस सही जगह होना चाहिए।
तीसरा, एक अनिश्चित चुनाव भी आपका हो सकता है, अगर वो आपकी अपनी तर्क आधारित सोच का नतीजा हो। ये रैंडमनेस वाली आपत्ति का एक चतुर जवाब है।
चौथा, बालाग्वेर ये नहीं कह रहे कि फ्री विल है, बल्कि ये कि ये संभव है और विज्ञान को इसे खोजना होगा। ये वैज्ञानिक नम्रता दिखाता है।
और पांचवा, अगर कोई कहता है कि हमारा चुनाव करने का गहरा एहसास बस एक भ्रम है, तो सबूत का बोझ उसी पर है। हमारी सहज भावना को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, उसे सीरियसली लेना होगा।
ये सब एकेडमिक बातें सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? आम इंसान के लिए इन विचारों का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल लेवल पर?
असर तो कई स्तरों पर पड़ सकता है। सबसे पहले तो व्यक्तिगत एजेंसी की भावना, मतलब ये एहसास कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारे चुनाव सच में हमारे हैं और मायने रखते हैं, तो ये हमें ज्यादा सशक्त महसूस करा सकता है।
हाँ, ये हमें भाग्यवादी बनने से रोक सकता है और हमें अपने बड़े फैसलों को ज्यादा जिम्मेदारी से लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।
बिल्कुल। और सोचिए, नैतिक जिम्मेदारी पर इसका क्या असर होगा? हम किसे दोषी ठहराएं, किसे शाबाशी दें? हमारी पूरी न्याय व्यवस्था इसी पर टिकी है कि लोग अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं।
हाँ, लेकिन बालाग्वेर का नजरिया हमें शायद एक संतुलन साधने में मदद करे। लोगों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार मानना, लेकिन साथ ही उन बाहरी और अंदरूनी कारकों को भी समझना जो उनके व्यवहार पर असर डालते हैं। थोड़ी सहानुभूति भी आती है इससे।
सही कहा। सोचिए, अगर कोई दोस्त वादा तोड़ दे, क्या हम उसे पूरी तरह दोषी माने, या बालाग्वेर के नजरिए से सोचें कि शायद वो एक मुश्किल टर्न डिसीजन के मोड़ पर था, जहां हालात या उसकी अपनी अंदरूनी कश्मकश ने उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। इस सोच से शायद माफ करना या सहानुभूति दिखाना थोड़ा आसान हो जाए।
हाँ, ये बात रिश्तों में भी लागू होती है और पालन पोषण या शिक्षा में भी। बच्चों को कैसे सिखाएं कि वो जिम्मेदार बने, लेकिन साथ ही ये भी समझें कि दुनिया में बहुत सी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। ये बैलेंस कैसे बनाएं?
और आखिर में ये हमें आलोचनात्मक विचारक बनाता है, क्रिटिकल थिंकर।
अगली बार जब आप कोई हेडलाइन पढ़ें कि वैज्ञानिकों ने फ्री विल को साबित या खारिज कर दिया, तो आप रुककर सोचेंगे कि क्या मामला वाकई इतना सीधा है।
हाँ, कि इसके पीछे की बारीकियां क्या हैं?
बिल्कुल। बालाग्वेर का काम हमें सिखाता है कि इन बड़े सवालों के जवाब अक्सर जटिल होते हैं।
तो आज के इस गहरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, सबसे स्ट्राइकिंग बात?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री विल की बहस मरी नहीं है, बल्कि एक नए, ज्यादा रोमांचक दौर में दाखिल हो गई है। इसे दर्शन शास्त्र के बंद कमरों से निकालकर विज्ञान की रोशनी में लाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और हाँ, टॉर्न डिसीजंस पर फोकस करना ये वाकई सोचने का तरीका बदल देता है।
और मुझे सबसे ज्यादा इस बात में चौंकाया कि कैसे क्वांटम अनिश्चितता जैसी अजीब चीज हमारे फैसलों का हिस्सा बन सकती है, बिना उन्हें पूरी तरह रैंडम बनाए। ये एजेंट ऑथर्ड प्रोसेस का विचार कि आप प्रक्रिया के लेखक हैं, भले ही अंत थोड़ा अनिश्चित हो, ये दिमाग में घूमता रहे। हाँ, वो कंट्रोल और अनिश्चितता का साथ आना।
और हाँ, लिविट के प्रयोगों को इतनी सफाई से चुनौती देना, ये दिखाता है कि वैज्ञानिक नतीजों की व्याख्या कितनी मायने रखती है। लगता है फ्री विल का सवाल अभी जिंदा है और शायद पहले से ज्यादा दिलचस्प भी।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रे फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।